कृष्णा, तो पिछले कई रविवारों से हम भक्ति के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में चर्चा करते आए हैं। विशेष करके रूप गोस्वामी ने बतलाए हुए 64 नियमों की चर्चा चल रही है। इनमें से कुल मिलाकर 28 नियमों का चर्चा हम कर चुके हैं और इन 28 नियमों में जो 19वां नियम है तरह तरह के अपराध, इसके बारे में तो विस्तार में चर्चा कर चुके हैं। तो आज से पुनः चालू करते हैं, लेकिन संक्षेप में पिछली बार जो चर्चा हुई थी उसके बारे में हम दो शब्द कहना चाहेंगे। हमारे स्मृति को, स्मरण को ताजा करने के लिए हम ये पढ़ रहे थे कि हमें देवी देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, हालांकि उनकी उपासना नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए। भगवान और उनके भक्तों के प्रति जो अपराध होता है उसको भी सहन नहीं करना चाहिए। ज्यादा ग्रंथ पढ़ना नहीं चाहिए, भगवान के सामने आकर भौतिक भावनाओं के शिकार होकर यहां आके भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अपने शरीर पर तिलक धारण करना चाहिए, तरह तरह के मुद्राएं भगवान के नाम की इत्यादि, उनको हमें धारण करना चाहिए। और निर्माल्य मतलब जो भगवान का प्रसाद है फूल रूप में, हार रूप में, हमारे शरीर पे उसको ग्रहण करना चाहिए। हमें भगवान के विग्रह के सामने नृत्य करके कीर्तन साथ साथ करना चाहिए, ये भी एक नियम है। ऐसे बताया जाता है कि कीर्तन करने के लिए हमें सीखना चाहिए और संकीर्तन के समय जो ताली बजाता है व्यक्ति, तो उसके जीवन में जितने सारे पाप हैं वो उड़ जाते हैं उन तालियों से। जिस तरह से पेड़ के नीचे खड़े होकर ताली मारते हैं तो पेड़ के शाखाओं पर बैठे हुए पक्षियां वो इधर उधर उड़ जाती हैं। फिर हमें मंदिर में आके प्रणाम करना चाहिए, जब मंदिर में आते हैं तो खड़े हो जाना चाहिए। फिर हम ये भी देख रहे थे कि जब भगवान के अर्चा विग्रह को बाहर शोभा यात्रा के लिए लिया जाता है तो हमें भी यात्रा में शामिल होना चाहिए, भगवान के पीछे पीछे या तो आगे चलना चाहिए। इस तरह से 27 हो गए हैं। 28वां, अब 28 से हम फिर से शुरू करते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं, भक्त को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम एक बार या दो बार प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाए। कम से कम एक बार, हफ्ते में कितना है, प्रतिदिन, प्रतिदिन कम से कम एक बार, अगर हो सके तो दो बार, प्रातः काल और सायंकाल में जाके भगवान का दर्शन करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान के मंदिर में आके कोई व्यक्ति 5 सेकंड 5 क्षण भी खड़ा रहे, भले वो कुछ समझे नहीं ज्यादा, ये क्या है, मैं कहां आया हूं, कुछ भगवान का स्थान है क्या है, लेकिन कुछ ज्यादा पता नहीं, केवल 5 सेकंड आकर भगवान के सामने खड़ा भी रहेगा, मंदिर में आएगा भी, विष्णु मंदिर में, उसको इतना फायदा हो जाएगा कि उसके कल्पना के बाहर है। केवल थोड़े क्षणों के लिए मंदिर में आने का फायदा, भले वो भक्ति भावना से भी नहीं आए, ये है भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आने का लाभ। और मंदिर में आना मतलब श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करना। श्री कृष्ण साक्षात यहां पर, प्रत्यक्ष यहां पर विराजे हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी सबसे बड़े व्यक्ति के इतने पास में हम आए हैं, सोचिए, अगर आप इतने ही पास होते प्रधानमंत्री के, तो आप क्या सोचते? अरे हम प्रधानमंत्री के साथ में आए हैं, वो हमारे पास इतने पास में खड़े थे। हम घर आके सबको बोलेंगे ना, सारे मोहल्ले में सब जगह बोलेंगे, अरे हम गए थे प्रधानमंत्री के, वो इतने पास में थे हमारे। तो प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, कितने प्रधानमंत्री कितने देशों के हैं, इंसान आते हैं जाते हैं, लेकिन भगवान तो हमेशा भगवान है, और वही भगवान यहां पर विराजे हैं, और उनके सामने हम यहां पर आ रहे हैं, तो कितना सौभाग्य है हमारे लिए। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं कि यह आध्यात्मिक संस्कृति है, हमारे भक्ति में प्रगति करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें मंदिर आना चाहिए। कई लोगों के मन में यह धारणा है, हम घर में भक्ति करेंगे, मंदिर में आने की क्या जरूरत है। खास करके पति कभी अपने पत्नी को भेजते नहीं है मंदिर, घर में ही भक्ति करो। और कभी कभी पत्नी भी पति को कहती है, मंदिर में क्यों जाते हो बार बार, घर में बैठ के कर सकते हैं ना। तो परिवार के सदस्य कभी कभी एक दूसरे को रोकते हैं, जो भक्ति में नहीं है वो उनको रोकते हैं जो भक्ति में है, कि मंदिर में मत जाना। लेकिन उनसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपका बच्चा तो घर में भी पढ़ सकता है ना, तो उसको स्कूल क्यों भेजते हैं। ऐसे अगर आपको कोई कहे कि मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, घर में भक्ति करो, तो हमारा उत्तर यही रहेगा। हम ये नहीं कहते कि घर में भक्ति नहीं करो, अवश्य करो, घर में भी तो करना ही चाहिए, घर को भी एक मंदिर बनाना चाहिए। परंतु घर को मंदिर कैसे बनाएं, वो ज्ञान कहां से मिलेगा, वो मार्गदर्शन कहां से मिलेगा, वो प्रेरणा कहां से मिलेगी, वो उत्साह कहां से मिलेगा। जब हम भगवान के मंदिर में आएंगे, हम भगवान का दर्शन करेंगे, यहां पर सीखेंगे कि कैसे भगवान का श्रृंगार किया जाता है, भगवान की आरती कैसे की जाती है, भगवान को भोग कैसे चढ़ाया जाता है, उनकी सेवा किस तरह से की जाती है, प्रवचन सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, कुछ समझ में आता है कि गीता और भागवत में लिखा क्या है, मनुष्य जीवन क्या है, हमें कैसे रहना चाहिए, और अन्य भक्तों से मिलते हैं तो हमें उत्साह मिलता है कि चलो ये सब भी कर रहे हैं भक्ति, हम अकेले नहीं हैं, हम भक्ति कर सकते हैं। जैसे एक विद्यार्थी जब पाठशाला में जाता है, वहां जाकर भी पढ़ाई करता है, वहां उसको पढ़ाई भी होती है, मनोरंजन भी होता है। आजकल स्कूलों में बच्चे ज्यादा मनोरंजन करते हैं, पढ़ाई कम है ना, एक दूसरे को छेड़ना या अध्यापक को छेड़ना या घर बहुत चिल्लाना मस्ती करना, तो उनको मनोरंजन भी हो जाता है क्योंकि अपने मित्रों के साथ में है, हम उम्र के बच्चे हैं सब, उनको आनंद आता है, साथ साथ सीखने को भी मिलता है। और फिर जो स्कूल में सिखाया जाता है उसको पुनः जाके उनको गृह पाठ करना पड़ता है, फिर से घर में जाके पढ़ना पड़ता है, अध्यापक उनको कहते हैं कि ये घर में पढ़ के आओ कल के लिए। इस तरह से अगर विद्यार्थी अच्छी तरह से विद्वान बनना चाहता है, अच्छे नंबर लाना चाहता है परीक्षा में, उसको स्कूल भी जाना चाहिए, स्कूल में जाकर अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहिए, साथ साथ घर में भी पढ़ाई करनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण या विष्णु के मंदिर केवल ऐसे साधारण मंदिर नहीं है जैसे इतने सारे हैं भारत में, जहां लोग केवल जाते हैं, थोड़े घंटी बजाते हैं, सर टेक कर चले आते हैं, कम से कम उतना तो करते हैं वो। परंतु अगर वो भगवान नहीं है, कोई देवी देवता हो, तो भी उनको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो वास्तव में भगवान का मंदिर वो है जहां आकर हमें प्रशिक्षण मिलता है, जहां हमें ज्ञान मिलता है कि परम सत्य कौन है, क्या है, और कैसे हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। इसलिए मंदिर में आना चाहिए, और फिर घर में भी हमें भक्ति करनी चाहिए, साथ साथ घर को मंदिर बनाना चाहिए। तो यह महत्व है, केवल घर में करने से नहीं चलेगा, मंदिर का प्रमुख उद्देश्य है सत्संग, जो कि अन्य जगहों में मिलना, खास करके आजकल कलयुग में, बहुत ही कठिन है। घरों में भी कर सकते हैं, परंतु घर में क्या होता है, टेलीविजन कहीं चल रहा है, कहीं टेलीफोन बजते रहता है और घर की समस्याएं याद आती हैं हमको। लेकिन मंदिर में आने से वातावरण बिल्कुल अलग है और यहां पे सुंदर विग्रह हैं, हम सबको एकत्र आके भगवान कृष्ण की सेवा करने की संधि मिलती है, तो ये फायदा है। प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कि महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में वहां पर जो निवासी हैं उनके लिए एक दैनिक कार्यक्रम है। आप तो जानते हैं वृंदावन में, जयपुर में, श्रीरंगम में, ऐसे कितने महत्वपूर्ण स्थानों में लोग दो बार मंदिर जाते हैं। जयपुर में हम कई बार कह चुके हैं यहां पर प्रवचनों के दौरान कि जयपुर में प्रातः काल 5 बजे मंगल आरती होती है गोविंद देव मंदिर में, कितनी बड़ी भीड़ होती है वहां। आप 4:45 बजे, 5 बजने में 5 मिनट जब कम होते हैं तब जयपुर के सड़कों को देखेंगे, राधा गोविंद मंदिर की ओर जो जाते हैं वो सड़कें, तो वहां पर कितने सारे लोग अपने अपने रास्ते से जल्दी जल्दी जा रहे हैं, कोई साइकिल में, कोई पैदल जा रहा है, कोई भाग के जा रहा है, महिलाएं जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, बूढ़े जा रहे हैं, पुरुष जा रहे हैं, व्यापारी जा रहे हैं, पतले मोटे सब लोग जा रहे हैं, ठंडी में गर्मी में, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक हम भगवान का दर्शन नहीं करेंगे हमारा दिन नहीं जाएगा, हमारा दिन में कुछ कमी है। तो भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान को भोग चढ़ाएंगे, फिर वो सारे जो वहां भक्त आए हैं उनको बांटेंगे, फिर अपने काम में चले जाएंगे, अपना दुकान खोलेंगे या ऑफिस में जाएंगे इत्यादि। तो यह है संस्कृति। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग जयपुर में राधा गोविंद देव मंदिर के बिल्कुल पास में ही रहते हैं, थोड़े लोग काफी दूर रहते हैं। तो उसी तरह से यहां भी हम देखते हैं राधा गोकुलानंद मंदिर में कई भक्त आते हैं, दिन में एक बार तो कम से कम दर्शन करके जाते हैं। कितने भक्त हैं, कोई सुबह आ सकते हैं मंगल आरती के लिए, कोई लोग सुबह नहीं आ सकते तो वो श्रृंगार दर्शन के लिए आते हैं, कोई उस समय भी नहीं आ सकते तो कोई दिन में कभी 9 बजे 10 बजे आते हैं एक बार, कोई शाम को आ जाते हैं। कम से कम अगर एक बार हमारे काम से पढ़ाई के लिए जाते आते हम मंदिर में चले आए तो कितना अच्छा होगा। ऐसे कितने लोगों को हम जानते हैं अन्य जगह में भी, कुछ भी हो जाए वो मंदिर में आएंगे ही। अभी अभी हम मैंगलोर से आए हैं तो वहां पर एक बहुत बड़े सर्जन हैं, वो उड़ीसा के हैं और हमारे मैंगलोर के इस्कॉन मंदिर में जगन्नाथ के विग्रह हैं, तो उड़ीसा के होने की वजह से जगन्नाथ के प्रति उनकी श्रद्धा है। तो इतने व्यस्त रहते हैं वो, उनको बिल्कुल समय नहीं मिलता। और हम देखते थे 3 दिन हमने देखा लगातार, अपने गाड़ी में आए, जल्दी से गाड़ी से बाहर आए, दरवाजा झट से बंद किया और भागते भागते उस सीढ़ियों चढ़ के गए ऊपर मंदिर को दर्शन करने के लिए। बोलने के लिए टाइम नहीं उनको, लेकिन दर्शन तो अवश्य करना है। भाग के भाग के, उम्र है लेकिन फिर भी सीढ़ियों के ऊपर भाग के हुए गए, दर्शन किया है शांति से, फिर से भाग के आए, गाड़ी में जल्दी से बैठे, चला के लेकर गए। रोज 3 दिन हम लगातार देखा, इतने समय की तंगी उनके लिए, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन में उन्होंने कुछ कमी नहीं की, रोज किया करते थे, आज भी करते हैं, क्योंकि ऐसे उनकी श्रद्धा है कि रोज भगवान का दर्शन एक बार करना चाहिए। इसलिए आप में से भी जो यह ज्यादा दूर नहीं रहते, अगर ज्यादा दूर रह रहे हो तो कठिन है आपके लिए, और खास करके आपके पास वाहन नहीं है और मंदिर रास्ते से काफी दूर पड़ता है आपके लिए, तो फिर क्या कर सकते हैं। परंतु अगर हो सके तो प्रयास कीजिएगा कि दिन में कम से कम एक बार आके भगवान का दर्शन तो ले लें, भले दूसरा काम हो या न हो, भगवान के सामने आकर उनको हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हैं और भक्ति भाव से उनका दर्शन करके हम जा सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वैसे शास्त्र में बताया गया है कि जो व्यक्ति ऐसे हर रोज भगवान कृष्ण या विष्णु के मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है, उसे पुनः एक मां के गर्भ के ताप को सहन नहीं करना पड़ता। मां के गर्भ में कितना कष्ट हुआ है आपको याद है? याद है? नहीं याद है? हम सबको याद नहीं है, मां के गर्भ में कितनी यातनाएं हमको सहन करनी पड़ी। अगर हमको इस समय स्मरण आता तो हम बेहोश हो जाते। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध में कपिल देव अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हैं, और उस समय वो मां के गर्भ में बच्चे की हालत क्या होती है उसका वर्णन करते हैं, और कैसे गर्भ बढ़ते रहता है, उसके शरीर का विकास कैसे होता है। बहुत विस्तार में उन्होंने ये ज्ञान दिया, और इस वर्णन में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि इतनी यातना होती है बच्चे को कि समझ लीजिए, प्रभुपाद पूछते हैं कि आपको किसी छोटे से थैली में बांध के रख दिया गया है जिसमें बिल्कुल अंधकार है, हवा नहीं है, और आपको ट्यूब से अंदर भोजन दिया जाए, और आपको इस तरह से गोल आकार में ऐसे आपको रखा जाए, कितने समय तक आप रह पाएंगे? और फिर मां के आहार में अगर कोई खट्टी चीज हो, कोई तीखा, कोई कुछ क्या, तो अपने चमड़ी को लग जाता है, कितना कष्ट होता है बच्चे को। और प्रभुपाद कहते हैं कि इतना कष्ट पाने से कोई भी व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन ये बच्चा नहीं मरता, केवल इसलिए कि अब तक उसकी चेतना इतनी विकसित नहीं हुई है। नहीं तो कोई साधारण विकसित चेतना वाला व्यक्ति होता तो मर ही जाता, इतनी पीड़ा होती है। इसलिए वो 7 महीने के मां के गर्भ में जब 7 महीने का रहता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं तो केवल यहां से निकलकर आपकी भक्ति करना चाहता हूं। लेकिन जब वो बाहर आ जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। माया बहुत शक्तिशाली है, तो ये भगवान के योजना से ये गर्भ का जो समय है हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत कठिन है। बार बार मां के गर्भ में जन्म लेना कितना कठिन हम भूल गए हैं, इसलिए हम माया में पड़ जाते हैं। अगर हम याद रख सकते कि कितना कठिन है तो शायद हम भक्ति कर पाते। इसलिए भक्त ने प्रार्थना की है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। कि हे मुरारी, ये संसार जो है बहुत कष्टदायक है, बहुत जबरदस्त है ये संसार, इतना कष्ट है यहां पे कोई सीमा नहीं इसकी। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार मां के गर्भ में आ जाना, ये बहुत हो गया। यह संसार बहुत उस्तार है, बहुत हो गया, बस हो गया प्रभु, अभी हमको क्या कीजिए, पार कर दीजिए, पार कर दीजिए संसार से, इसलिए मैं आपके शरण में आता हूं। तो ऐसे भी बच्चा प्रार्थना करता है मां के गर्भ में। तो शास्त्र में बताया जाता है कि जो व्यक्ति इस तरह से हर रोज भगवान कृष्ण के मंदिर में आके दर्शन करता है भक्ति भाव से, वो मां के गर्भ में रह के इन यातनाओं को कभी भविष्य में अनुभव नहीं करेगा। और अगर हर दिन नहीं हो पाए, जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। फिर आगे, और यहां इसी किताब में प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि वृंदावन में कम से कम 5,000 मंदिर हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को 5,000 मंदिर में रोज दर्शन करना दो समय सुबह शाम संभव नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं कम से कम जो प्रमुख मंदिर हैं में वृंदावन के निवासी सभी लोग जाते हैं, विशेष करके तो षड गोस्वामियों ने जो मंदिरों का निर्माण किया उनमें तो लोग अवश्य जाया करते हैं। 7 महत्वपूर्ण मंदिर हैं, 6 गोस्वामी ने किए हुए और फिर अन्य भी हैं जैसे बांके बिहारी मंदिर हैं, और गोस्वामियों ने स्थापित किए हुए मंदिर हैं, और उनके नाम बता सकते हैं आप? वृंदावन के 6 गोस्वामी ने स्थापित किए हुए मंदिर कौन से हैं? राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, राधा गोविंद, राधा रमण, राधा मदन मोहन। तो इस तरह से ये प्रमुख मंदिरें हैं वृंदावन की, इनके तो दर्शन करने चाहिए। बेलगाम में कौन सा मंदिर है? राधा गोकुलानंद। और यहां पर इतने सारे गोस्वामी हैं, इन्होंने स्थापना की है। गोस्वामी मतलब जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में किया है और जो हमेशा भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। फिर 29वां नियम, मंदिर की कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाएं। यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं, हर मंदिर में उसके चारों ओर कम से कम 3 बार घूमने के लिए व्यवस्था रहती है। कुछ भक्त अपने व्रत के अनुसार 3 से अधिक परिक्रमाएं करते हैं, कभी 10 तो कभी 15 भी। गोस्वामी गण तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा किया करते थे, संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र की भी परिक्रमा करनी चाहिए। तो इसको प्रदक्षिणा कहते हैं। हमारे मंदिर में दुर्भाग्य से ऐसे स्थान नहीं है, जगह नहीं है। कई मंदिरों में ऐसे, खास करके शहरों में जो मंदिर बनाए जाते हैं, जगह की कमी की वजह से, कानूनी कारणों से, कभी कभी ऐसे हम परिक्रमा पथ नहीं बना सकते। लेकिन आशा करते हैं जब राधा गोकुलानंद अपने लिए बड़ा मंदिर बनाना चाहेंगे तो उस समय शायद भगवान के परिक्रमा 3 बार करने के लिए एक पथ हो सके, और ऐसे 3 बार परिक्रमा करना चाहिए। शास्त्र में बताया जाता है कि जो व्यक्ति इस तरह से भगवान के मंदिर की, भगवान के अर्च विग्रहों की परिक्रमा करता है कम से कम 3 बार या अधिक, तो उसे इस भौतिक संसार की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये भौतिक संसार की परिक्रमा क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चक्कर चल रहा है। कितने बार काट रहे हैं? 3 बार, करोड़ों बार हम ये संसार की परिक्रमा करते हैं। 84 लाख योनियों में घूमते जा रहे हैं। कितनी परिक्रमाएं कर ली है हमने भौतिक संसार में। बद्ध जीव जो है वो बढ़िया पर्यटक है, एक भी लोक छोड़ा नहीं है, एक भी योनि छोड़ी नहीं है। पाताल लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक सारे लोकों में हम जा चुके हैं, सारे योनियों को अनुभव ले चुके हैं, लेकिन हमको याद नहीं है, केवल इतना ही है। तो ये भ्रमण जो है ये बंद हो जाएगा। और खास करके चातुर्मास जैसे समय में अगर हम ऐसे परिक्रमा करें भगवान का या उनके धाम का या उनके मंदिर का, तो इसमें विशेष लाभ होता है। ऐसे बताया जाता है कि चातुर्मास में जो कृष्ण या विष्णु के मंदिर की परिक्रमा 3 बार करता है, ये सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के बराबर है और सारे तीर्थ स्थानों का दर्शन करने के बराबर है, खास करके गंगा जी का दर्शन करने के बराबर है, केवल चातुर्मास में भगवान की परिक्रमा करने में। तो देखिए इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कितना लाभ होता है। ये सब व्यवस्था भगवान ने हम सबके लिए किया है। आखिर ये सारे जो नियम है कि ये करने से आपको ये फल मिलेगा, कोई करने वाला तो है ना, कोई नियम बनाने वाला है। इस भौतिक जगत में कर्म का सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमें फल मिलते हैं, पाप करते हैं तो बुरा फल मिलता है, पुण्य करते हैं तो एक भौतिक दृष्टि से अच्छा फल मिलता है, लेकिन दोनों से हम बद्ध रहते हैं। भक्ति के कार्य करने से भी हमको फल मिलते हैं, भक्ति में आध्यात्मिक फल मिलते हैं। तो चाहे भौतिक कार्य हो या आध्यात्मिक कार्य हो, हमारे कार्यों के फल हमको मिलेंगे। तो ये फल कौन प्रदान करते हैं? भगवान प्रदान करते हैं। तो भगवान कितने कृपालु हैं कि अपने भक्तों के लिए उन्होंने कितने फायदे दिए हैं। इतना सा करो भगवान के लिए, इतना फायदा मिलेगा आपको। देखिए 3 बार चातुर्मास के समय भगवान के मंदिर की परिक्रमा करने से सारे तीर्थ स्थानों के भ्रमण का फल आपको मिल जाएगा, है ना भगवान कृपालु। तो इसलिए इन सारे नियमों को हमें जानना चाहिए। ताकि हम इनका फायदा ले सके। भगवान ने इन सारे नियमों को हमारे लिए बनाया है। आजकल हम देखते हैं कि व्यवसाय में जो व्यापार करते हैं उनको सरकार का कायदा कानून जो है वो अच्छी तरह से जानना चाहिए, तो उस जान सकते हैं कि कहां से वो मार्ग ढूंढ सकते हैं ज्यादा पैसा बनाने के लिए। इस कानून से ऐसा करेंगे तो इसमें ये हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर हमें भक्ति में भी आगे बढ़ना है ज्यादा तेजी से, तो हमको भगवान के भक्ति के कानून जानने चाहिए ताकि हम उनका फायदा लेकर अच्छी तरह से निकल सकें, बाहर जा सके, इस भौतिक दुनिया से भगवान के धाम को पहुंच सके। जैसे सरकार लोगों के लिए बहुत फायदे देती है, ऐसे ये स्कीम है वो स्कीम है, कोई गरीब है पैसा नहीं उसके लिए घर बनाने के लिए स्कीम है, लेकिन लोगों को पता नहीं है इसलिए इसका फायदा नहीं उठा सकते। उसी प्रकार से भगवान ने हम सब के लिए भगवान के धाम में जाने के लिए बहुत स्कीम बना के रखे हैं, बहुत योजनाएं बनाई हमारे लिए, लेकिन योजनाओं को हम जानेंगे तो फायदा उठा पाएंगे। तो ये एक सरल सी योजना है। आजकल लोग समझते हैं अरे ये तो अंधश्रद्धा है, क्या घूमते रहते हैं मंदिरों के, क्या फायदा इसका। बहुत फायदा है। हम अभी अभी उडुपी से आए तो हम देखते हैं कि कितने ऐसे भक्त हैं। हम अनंतेश्वर मंदिर में गए थे तो वहां कितने भक्त कम से कम 50 बार परिक्रमा कर रहे हैं रोज आके। हम जप के लिए बैठे थे तो वहां देखा कई लोग आते हैं ऐसे परिक्रमा करते हैं मंदिर के। तो ये बहुत फायदा लाभदायक होता है। तो हमें मंदिरों में जब यहां भले हम ना कर सकें, लेकिन जब अन्य जगह जाएं मंदिर का दर्शन करने के लिए अवश्य परिक्रमा हमें कर लेना चाहिए। गोस्वामी गण वो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा किया करते थे। गोवर्धन की परिक्रमा कम से कम 21 किलोमीटर की है और सनातन गोस्वामी एक लंबी परिक्रमा करते थे चक्रतीर्थ, मतलब आगे और जाके, तो उनकी परिक्रमा तो और 24-25 किलोमीटर हो जाती थी और वो रोज करते हैं परिक्रमा करते थे। आप में से कितने भक्त गोवर्धन की परिक्रमा कर चुके हैं सारे गोवर्धन पर्वत की? कई भक्त हैं। परिक्रमा करने के बाद आपको कैसे लगा, पैरों की क्या दशा हुई? काफी थकावट महसूस हुई ना, और सोचा कि एक दिन तो पूरा आराम करेंगे, लेकिन सनातन गोस्वामी हर रोज करते थे। एक बाबा जी को हम मिले, वो हमें बता रहे थे कि वो हर दिन गोवर्धन की परिक्रमा 3 बार करते हैं। शायद कितने समय के लिए वो ऐसा कर पाएंगे, उनका शरीर कब तक साथ देगा नहीं मालूम, और न ही हमें ये सब करने की जरूरत है। परंतु कहने की बात है कि हां परिक्रमा करने से कितना लाभ होता है। और कई भक्त वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, वृंदावन के शहर की परिक्रमा, और कई लोग 84 कोस परिक्रमा करते हैं, मतलब सारे ब्रजमंडल की परिक्रमा। और कई एकादशियों के दिनों पे आप देखेंगे तो वृंदावन में कितनी भीड़ होती है, क्योंकि वृंदावन के शहर की परिक्रमा कई लोग करते हैं, हजारों की संख्या में बच्चे बूढ़े। कार्तिक में जब हम वृंदावन गए थे पिछले साल में, तो हम भी वृंदावन की परिक्रमा में गए थे, हमारे साथ में एक भक्त थे, और हमने देखा कि साथ साथ हमारे थोड़ी दूरी में एक छोटा सा बच्चा है, शायद उसकी उम्र कितनी 7 साल से ज्यादा नहीं हुई होगी, वो भी काफी समय से देख रहे थे हम कि वो भी चल रहा है। तो हमने पूछा उसको कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है? बोले नहीं मैं अकेले आया। तुम्हारा गांव कौन सा है? तो एक गांव का नाम बोला उसने। कितनी दूर है यहां से? बोला 2 घंटे लगते हैं जाने के लिए, मतलब काफी दूर है गांव। तो ये लड़का, छोटा सा लड़का, अपने गांव से बस से कैसे भी आया वृंदावन में केवल इस परिक्रमा को करने के लिए। छोटा बच्चा अकेले आया, अकेले वृंदावन की परिक्रमा कर रहा था, और ऐसे पक्का था कि बस इधर उधर नहीं देखना, अपने परिक्रमा करते करते चलना, मतलब काफी समय से पहले भी करते आ रहा होगा। देखिए कितनी श्रद्धा। तो व्रज में रहने वाले लोगों की महिमा देखिए, छोटे छोटे बच्चे में भी इतनी श्रद्धा, ये अकेले, और बोले माता पिता कुछ विरोध नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे हो कहां जाओगे, नहीं नहीं वो कुछ बोलते नहीं है, ठाकुर जी देखने वाले हैं सब, ठाकुर जी देखेंगे बोलते हैं। तो देखिए ये है श्रद्धा। तो हम जब भी वृंदावन जाएंगे हमें कोशिश करना चाहिए, 84 कोस परिक्रमा के लिए बहुत समय लग जाता है, कम से कम वृंदावन की परिक्रमा तो हम कर सकते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा कर सकते हैं, जिन मंदिरों में हम जाते हैं उस मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं। ऐसे परिक्रमा करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और अगले नियम में भी ये बताया हुआ कि हमें वृंदावन की परिक्रमा भी करने का प्रयास करना चाहिए। 10वां या 30वां, मंदिर के अर्चक विग्रह की पूजा विधान पूर्वक की जानी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं, यथा आरती करना तथा प्रसाद चढ़ाना, अर्चक विग्रह का अलंकरण करना आदि, ये सब काम नियमित रूप से होनी चाहिए। तो यहां हम देखते हैं कि मंदिर में भी प्रातः काल से लेकर रात तक भगवान की सेवा की जाती है। सुबह को 4 बजे भगवान को, 4:15 बजे भगवान को जगाया जाता है, भोग चढ़ाया जाता है। वैसे कई मंदिरों में उठाने के लिए भी सुंदर कोई गीत गाते हैं, इस भाग में उसको भूपाली बोलते हैं, है ना, उठी उठी गोपाला, ये संस्कृति है। लेकिन अभी उठ के हम जल्दी उठ के गोपाल को उठाते नहीं हैं, है ना, हम उठेंगे 8 बजे 9 बजे, जब घर में टीवी सुनेंगे तब उठेंगे। पहले पहले सुबह सुबह बच्चे जब अपने माता पिता को कुछ पूजा करते हुए घंटी बजाते हुए सुनते थे, फिर उस मधुर ध्वनि से उनकी नींद खुल जाती थी, फिर उनको भी उठना पड़ता था, जल्दी से स्नान करते थे, अपने माता पिता के साथ में चले आते थे घर में पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए। कितना अच्छा कुटुंब, कितना सुखी कुटुंब हो सकता है ये। तो घर में भी हमें ऐसे पूजा करना चाहिए, अपने छोटे से मंदिर में मंगल आरती करनी चाहिए, भगवान को भोग चढ़ाना चाहिए, भगवान के सामने कीर्तन करना चाहिए। और कई भक्तों का प्रश्न रहता है कि कभी कभी हम मंदिर में आते हैं तो उस समय हम भगवान की सेवा के लिए क्या करें। जैसे समझ लीजिए अभी जन्माष्टमी है या कोई उत्सव का दिवस है और अब ज्यादा समय यहां सेवा करने के लिए आए हैं, तो कोई बात नहीं, ये जान लीजिए कि घर के विग्रह में और मंदिर के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। अगर आप मंदिर की सेवा के लिए यहां पर आ रहे हैं तो यहां जो आप सेवा कर रहे हैं वो वहां घर के विग्रह स्वीकार कर रहे हैं उस सेवा को, तो घर के विग्रह को आप सुला सकते हैं, विश्राम दे सकते हैं और यहां निश्चिंत होकर आ सकते हैं। अगर आप दोनों चीजें संभाल सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन मंदिर की अर्चक विग्रह की सेवा में और घर की सेवा में काफी अंतर है, क्योंकि मंदिर में काफी कड़क नियम होने चाहिए, मंदिर में सब कुछ समय पर ही होना चाहिए, मंदिर में स्वच्छता के नियम भी काफी कड़क होते हैं, मंदिर में सब कुछ ठीक ठाक व्यवस्थित होना चाहिए। घर में इतना कड़क होना कई बार मुश्किल हो जाता है, घर में बच्चे भी रहते हैं, घर कभी कभी छोटा रहता है तो जगह अलग से मंदिर के लिए नहीं रह सकता है, सब कुछ वहां चल रहा होता है घर में, अतिथि लोग भी आते हैं, कभी वो भक्त होते हैं कभी नहीं होते हैं, कभी कभी घर में घर के सदस्य भी कभी कभी भक्त नहीं होते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम में थोड़ी बहुत छूट दी जाती है घर में भगवान की सेवा के लिए। इतना कड़क भले हम न रहें परंतु हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हमको बहुत ज्यादा छूट दी गई है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, जितना हो सके हमें कड़क रहना चाहिए परंतु प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए। जो घर के लिए संभव नहीं है, साध्य नहीं है, उसको हमें नहीं करना चाहिए। मंदिर की तरह हम सोचें कि घर में करेंगे वो मुश्किल हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ये लीला सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि कृष्ण बलराम दोनों को भूख लगी थी और उन्होंने अपने ग्वाल बाल मित्रों से कहा कि जब वहां दूरी पर थोड़े ब्राह्मण हैं उनसे थोड़ा भिक्षा मांग के आना, कहो कि कृष्ण और बलराम दोनों भूखे हैं और थोड़ा प्रसाद चाहिए। तो ग्वाल बालों में से एक बच्चा था जिसका नाम था सुदामा। ये सुदामा विप्र नहीं, द्वारका के सुदामा नहीं, ये अलग सुदामा थे। ये सुदामा वृंदावन के ग्वाल बाल थे, दोनों कृष्ण के मित्र लेकिन अलग अलग जगह। सुदामा विप्र वो कृष्ण के मित्र बने जब वो सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में गए थे, उस समय उनके सहपाठी थे। और ये सुदामा वृंदावन के ग्वालबाल थे, गोप थे। तो सुदामा फिर आगे चला गया एक ब्राह्मण के घर पूछने के लिए कि हमें थोड़ा भोजन दीजिए, प्रसाद दीजिए, कृष्ण बलराम भूखे हैं। तो जाते जाते वो एक श्लोक बोल रहा था जिसमें वो कहते हैं कि कृष्ण की ऐसे हम पूजा आराधना करेंगे, केवल इतना ही करेंगे तो हमें वो सारे फल मिल सकते हैं, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति, इस सारे पृथ्वी का राज्य, ये ऊंची ऊंचा जन्म, बहुत सारा धन, सौंदर्य, योग की सिद्धियां, जो चाहिए वो सब कुछ मिल सकता है, केवल अगर हमने भगवान कृष्ण की सेवा की, उनके अर्चक विग्रह की सेवा की तो। लेकिन कृष्ण के भक्त इन चीजों के लिए भगवान की सेवा नहीं करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? भक्ति के लिए। तो सुदामा ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो बताना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कोई साधारण चीज नहीं है। केवल भगवान की भक्ति, थोड़े से अर्चक विग्रह की सेवा करने से कितना लाभ मिलता है, ये बताने के लिए सुदामा ऐसे बोल रहे थे। अभी इन सब भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, लेकिन वही फल थोड़ा समय रोज भगवान की अर्चक विग्रह की सेवा करें, उनके नाम का जप कीर्तन करें, वो मिल सकता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो व्यर्थ में अपने परिश्रम को बचा लेता है, दिन रात गधा मजूरी करने के बजाय वो थोड़ा समय भगवान के लिए निकालता है और भगवान उसकी सारी मांगे पूर्ण करती हैं। लेकिन फिर जब वो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है तो वो सोचने लगता है कि मुझे भौतिक चीजों के लिए भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, केवल भक्ति मांगता है भगवान से। इसलिए एक संत ने कहा है, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृत एपि मुरारी समर्चा, त्रियते तस्य यमेन न चर्चा। वो कहते हैं गंगा जल लव कणिका पीता, अगर थोड़ा सा गंगा जल का पान कोई करे, या तो फिर वो अर्चा विग्रह की सेवा करे, मुरारी समर्चा सकृत एव, केवल एक बार किसी ने ऐसे किया तो उसे क्या होगा? उसके पास यमदूत नहीं आ सकते, यमेन न चर्चा, यमराज आके उनके पास वाद नहीं कर सकते, अरे तुम्हें आना चाहिए। हम बोलेंगे नहीं 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 मुझे नहीं जाना है, मेरा नंबर नहीं है अभी। यमदूत बोलेंगे नहीं नहीं तुम्हें आना ही पड़ेगा, जैसे अजामिल के साथ में हुआ था। तो हमें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। सकृत अपि मुरारी समर्चा, मुरारी मतलब श्री कृष्ण। तो थोड़ा सा एक बार भी अगर किसी ने श्री कृष्ण के विग्रह की सेवा कर ली तो यमदूत उसके पास नहीं आएंगे। तो कितना लाभ होगा देखिए, भगवान की कृपा है, छोटा सा काम करने से बहुत सा लाभ मिल जाता है। इसलिए हमें घर में भी और मंदिर में भी आके भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। अभी देखिए इस्कॉन के अलग अलग मंदिरों में अर्चा विग्रह हैं। कई मंदिरों में जो बाहर रहने वाले भक्त हैं, कांग्रेगेशन के भक्त हैं, गृहस्थ भक्त हैं, उनको संधि नहीं मिलती है आके भगवान की पूजा करने के लिए। कई मंदिरों में थोड़ा बहुत मिलता है, कई मंदिरों में नहीं मिलता। लेकिन हमारे मंदिर में देखिए कि आप सबको मौका मिल रहा है आके भगवान की सेवा करने के लिए। यहां आप सब कितने आते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, भगवान को जगा सुलाते हैं, कभी कभी जगाते भी हैं, और उत्सवों के दिन में आप आके श्रृंगार करते हैं, बहुत सारी सेवा करते हैं, भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, तो ये एक अनमोल अवसर है। इसका फायदा उठाकर आप बहुत भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, तो कृपया उसका फायदा उठाइएगा। इसको साधारण चीज मत समझिए। किसी को याद दिलाना नहीं चाहिए कि आप नहीं आए, हफ्ते में एक बार हमें आना है, तो हफ्ते में एक बार अगर हमें यहां आकर भगवान की सेवा करने की संधि मिले तो सोचिए, सकृत एवं मुरारी समर्चा, एक बार भगवान कृष्ण के विग्रह की सेवा करने से इतना लाभ मिलेगा, तो हफ्ते में एक बार यहां आके करने से कितना लाभ मिलेगा। इसलिए हमारी सेवा में जो भक्त आप सेवा कर रहे हैं, आप कृपा करके रेगुलरली आइएगा, नियमित तौर से आइए। जब भी आपका समय है आने के लिए, सही समय पर आइए, पूरे भक्ति भाव से कीजिए, पूरा पूरा फायदा उठाइए। अर्चक विग्रह की सेवा करने के लिए केवल दीक्षित भक्तों के लिए अनुमति है, लेकिन जो चार नियम का पालन कर रहे हैं, 16 माला का जाप कर रहे हैं, कंठी माला पहने हुए हैं और कई काफी समय से वो भक्ति में हैं, वो पीछे भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। भगवान के बर्तनों को धोना इत्यादि, ऐसे कई छोटी छोटी सेवाएं होती हैं, तो आप में वो कर सकते हैं। अन्य मंदिरों में ये बहुत कम संधि मिलती है, याद रखिए, इसलिए इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। और जब यहां आगे चल के बड़े विग्रह आ जाएंगे, राधा गोकुलानंद बोलेंगे कि हमें अभी हमें बड़ा होना है, तो उस समय प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद में केवल जिनको दूसरा दीक्षा जिनकी दूसरा दूसरी दीक्षा हुई है, केवल वही आ सकेंगे। इसलिए अभी जो करना है सेवा कर लीजिए, आगे चल के पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए इसके बारे में हमें बहुत सीरियस गंभीर रहना चाहिए, इसका पूरा पूरा फायदा हमें उठाना चाहिए। अगर केवल हम ये जान सकते या याद रखते कि जो हम कर रहे हैं छोटी से छोटी सेवा, इसमें कितना फायदा है, तो हम कभी भी इसके बारे में लापरवाही नहीं करते, एक दिन भी जाने नहीं देते। इसलिए संधि ये सुवर्ण संधि है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। आगे रूप गोस्वामी कहते हैं, 31वां, अर्चा विग्रह की स्वयं सेवा की जाए। कैसे कर सकते हैं अर्चा विग्रह की सेवा? वैसे बहुत सारी चीजें हैं, रूप गोस्वामी आगे बताते हैं कि हमें मंदिर में जो भगवान विराजे हैं उनकी ऐसी सेवा करनी चाहिए जैसे एक सेवक राजा के लिए करता है। मन में कल्पना कीजिए, राजा की सेवा कैसे की जाती है, मन में कल्पना कर सकते हैं ना? ठीक उसी तरह से हमें अर्चा विग्रह की सेवा करनी चाहिए। इसलिए भगवान के जो मंदिर होते हैं वो राजा के महल की तरह होते हैं, और है ही राजा वो, है ना, असली राजा तो वही है। इसलिए मंदिर बड़े बड़े होते हैं, शानदार होते हैं, और कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हैं, मंदिर में पैसा खर्च करने के बजाय आप गरीबों में क्यों नहीं बांटते? तो हम उनको ये बताएंगे, आपके लिए आप इतना बड़ा बंगला क्यों बना रहे हैं, आपका पैसा भी गरीबों में बांट दो, पहले वो अपने लिए अच्छा बंगला बनाएंगे अच्छा खासा, और फिर भक्तों को बोलेंगे आप क्यों बना रहे इतना बड़ा मंदिर, है ना। तो देखिए भक्त संसार के लोग ऐसे होते हैं, जब हर व्यक्ति अपना अपना घर बनाता है, शानदार घर बनाना चाहता है, और किसी के पास शानदार घर नहीं है, कम से कम शानदार घर बनाने का स्वप्न तो देखता है दिन रात, और उसके हाथ में जब पैसा आएगा तो अवश्य सबसे पहली बार अपने लिए बड़ा घर बनाएगा, है कि नहीं? तो फिर भगवान के लिए मंदिर क्यों नहीं बनाए बड़ा? एक साधारण ऑफिसर जो भी है वो भी अपने लिए अच्छा बड़ा घर चाहता है, बना लेता है, एक मंत्री के लिए तो महल जैसा हो जाता है। और आप देखिए, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई महल से कम नहीं, वास्तव में महल में ही वो रहते हैं, राष्ट्रपति भवन वगैरह देखिए, वो तो महल थे। तो एक छोटे से देश के छोटे से राजा के लिए आप जब इतने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उनके लिए उपयुक्त स्थान रहने के लिए, क्योंकि उनका स्थान वैसा है, प्रेस्टीज का सवाल है उनके लिए, सम्मान जो एक उस पद के साथ साथ उनका निवास स्थान होना चाहिए। अगर देश का राष्ट्रपति एक झोपड़ी में रहे तो लोग सोच रहे ये क्या है। तो उसी तरह से राष्ट्रपति को बड़ा घर चाहिए। तो भगवान कौन है ये कम पड़ जाएगा। हमारे अंदर शक्ति सीमित है, हमारी शक्ति के अनुसार हम मंदिर बना सकते हैं भगवान के लिए। कोई छोटा मंदिर बनाएगा, कोई बहुत बड़ा बनाएगा, लेकिन बहुत बड़ा भी बनाए तो कितना बड़ा बना सकता है? वास्तव में भगवान के लिए जितना बनाना चाहिए उतना बड़ा हम बना सकते हैं? नहीं, संभव नहीं है। तो फिर क्यों हमें ईर्ष्या करनी चाहिए भगवान से कि भगवान के लिए इतना बड़ा महल क्यों बना रहे हैं? दूसरे शब्दों में वो सोच रहे हैं कि हम सबको हमारे लिए बनाना चाहिए। तो भगवान के लिए अच्छा निवास स्थान बना के उनकी अच्छी तरह से सेवा अगर हम करेंगे तो हमें सारे समाज को लाभ दे रहे हैं। केवल गरीबों को भोजन देने से जो फायदा हमें मिलेगा और दूसरों को मिलेगा, उससे लाखों लाखों गुना ज्यादा फायदा हमें भगवान श्री कृष्ण के लिए मंदिर बना के उनकी सेवा करके यहां भक्तों के सत्संग बना के हो जाएगा। यह है भक्ति की श्रद्धा। लोगों को ज्ञान नहीं है इसलिए वो ऐसे उल्टी बातें करते हैं कि भगवान के लिए मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है। और रूप गोस्वामी आगे ये भी कहते हैं कि जो अमीर हैं, जो धनी हैं, उनको सामने आना चाहिए भगवान के लिए सेवा करने के लिए। अर्च्य विग्रह की सेवा है, अन्य तरह तरह की सेवा यहां उपलब्ध हैं, और कई ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है भगवान की सेवा के लिए। तो सब लोग अपनी अपनी सेवा में लगे हुए हैं भगवान के लिए, लेकिन विशेष करके जो धनी लोग हैं उनके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनको सामने आना चाहिए, अपने धन को दान में देना चाहिए मंदिर के लिए, ताकि अच्छी व्यवस्था बन सके भगवान के लिए। ये उनकी सेवा है। सभी लोगों की सेवा एक स्तर की नहीं हो सकती है। जितनी सेवा मंदिर में रहकर की जा सकती है शायद बाहर रहकर नहीं की जा सकती मंदिर के लिए, क्योंकि बाहर और भी जिम्मेदारी रहती है। लेकिन फिर भी यथाशक्ति अपने अपने स्थान में रहकर जितना हमसे हो सके ज्यादा से ज्यादा हमें करने का प्रयास करना चाहिए। अभी रथ यात्रा सामने आ रही है, एक महीने में बिल्कुल। तो आप सब इतनी सेवाओं में लगे हुए हैं, आप में से कोई नगर संकीर्तन में जा रहे हैं, कोई लक्ष्मी एकत्र करने के लिए लगदान लेने के लिए जा रहे हैं, कोई सामग्री लाने के लिए जा रहे हैं, तरह तरह की सेवाएं हैं। तो इस तरह से ऐसे भगवान के मंदिर में आके हमें सेवा के लिए उत्सुक रहना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम क्या सेवा कर सकते हैं। जो मंदिर में आते हैं तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको मंदिर से क्या मिलेगा। हमको ये सोचना चाहिए कि हम मंदिर को क्या दे सकते हैं। मंदिर मतलब कृष्ण, और वैसे कृष्ण को हम क्या दे सकते हैं? सब तो कृष्ण का ही है। कृष्ण की संपत्ति, कृष्ण की शक्ति, कृष्ण की बुद्धि, कृष्ण की योग्यता हम श्री कृष्ण के लिए समर्पित कर रहे हैं। लेकिन इस समर्पण में हमारी भलाई है, इसलिए हर एक भक्त को सामने आना चाहिए राधा गोकुलानंद के सामने, राधा गोकुलानंद है जगन्नाथ, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं। हर एक भक्त को कोई ना कोई सेवा अवश्य करनी चाहिए, यह भी एक भक्ति का नियम है। 32वां नियम यह है कि मंदिर में आके हमें गायन करना चाहिए, मतलब गीत गाने चाहिए। कौन से गीत? सबसे श्रेष्ठ सुंदर गीत है हरे कृष्ण मंत्र। लेकिन लिंग पुराण में यह बताया जाता है कि जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में आके ऐसे भगवान के गीत गाता है तो वो भगवान के धाम में उनके लोक में जाता है। देखिए, केवल उनके गीत गाने से और ऐसे भक्ति भावना से गीत गाकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि शिव जी की प्रार्थना से भी ज्यादा भगवान श्री कृष्ण उस भक्त से होते हैं जो बड़े भक्ति भाव से आकर भगवान के सामने उनकी स्तुति करता है, सुंदर गीत गाता है उनके लिए। प्रभुपाद कहते हैं कि कितने सारे गीत हैं हमारे लिए भक्ति में। भगवत गीता है ना, गीत गीत है ना, नाम ही है भगवत गीता। प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवत, ये भी एक गीत है। कितने सुंदर मधुर स्वर से सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब श्रीमद् भागवत का पाठ करते तो वो गाते थे, इतने मधुर ढंग से उनकी आवाज थी और वो ऐसे अच्छी तरह से गाते थे हर एक श्लोक को कि लोग बिल्कुल भाव विभोर हो जाते थे। और वो इतने निपुण थे संगीत में कि हर एक श्लोक को वो 3-4-5 अलग अलग धुन में गाते थे और लोगों को ऐसे लगता था कि बस बैठकर हम यही सुनते रहे। इस तरह से भगवान के ये गीत हैं। लेकिन आप सोचेंगे भाई हमको तो गाना नहीं आता, बेसुरे हमारा आवाज तो बेसुरा है, क्या करें। कोई बात नहीं, भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपकी कितनी कला है, कि आप लता मंगेशकर जैसे गा सकते हैं कि नहीं गा सकते हैं, ये भगवान नहीं देखते हैं। भगवान हमारे हृदय को देखते हैं। जितनी कला भगवान ने हमें दी है उससे हमें गाना चाहिए, भले भौतिक दृष्टि से वो अच्छा हो या न हो, अगर भक्ति से हो तो अच्छा है। लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर गीत के लिए बड़ी अच्छी कला है लेकिन भक्ति नहीं है तो भगवान वो कला को स्वीकार नहीं करते हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं। तो हमें आकर ऐसे उत्सवों में भी भाग लेना चाहिए जहां ऐसे सुंदर स्तोत्रों का पाठ होता है, जैसे हर रोज श्रृंगार दर्शन के बाद ब्रह्म संहिता का पाठ किया जाता है, कभी कभी गीता के अध्यायों का श्लोकों का पाठ किया जाता है मंगलवार को, शनिवार को, और अन्य तरह तरह के गीत यहां गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं वैष्णव आचार्यों के। तो ऐसे सब गीत गाकर हमें बहुत फायदा हो जाएगा। आगे रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें संकीर्तन करना चाहिए, मंदिर में आके संकीर्तन करना, ये 33वां नियम है। रूप गोस्वामी अनेक शास्त्रों से प्रमाण सामने रखते हैं और कहते हैं कि एक बार अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करता है हृदय से तो वो इतने पापों को नष्ट कर सकता है जितने कि वो जीवन भर करते रहे तो नहीं कर पाए। इसका मतलब कि जीवन भर अगर कोई व्यक्ति पाप करता रहे, ज्यादा से ज्यादा पाप, अगर कोई व्रत ले ले कि एक क्षण में गवाऊंगा नहीं, हर एक क्षण में पाप करूंगा मैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचे 24 घंटे में 24 के 24 घंटे में मैं पाप 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 करते रहूंगा जीवन भर, इतना पाप करने के बाद अगर उसने एक बार श्री कृष्ण का नाम भक्ति भाव से लिया तो ये सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, क्या मतलब नहीं, पाप करते रहे, अरे कोई बात नहीं, हमने सुना है मंदिर में कि बस एक कृष्ण नाम से सारे पाप धुल जाते हैं, तो मजा करो, सिनेमा में जाओ, होटल में जाओ, इधर उधर कुछ करो, और फिर हरे कृष्ण मंदिर में जाओ रविवार में एक बार, कुछ संकीर्तन में 5 मिनट कीर्तन करो और भाग आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं, ये नाम अपराध है, 7वां नाम अपराध। नाम के बल पर पाप करना ये बहुत बड़ा अपराध है, और ऐसे करेंगे तो भक्ति में प्रगति तो दूर की बात है लेकिन हम पीछे हटेंगे भक्ति में। इसलिए आकर हम अगर संकीर्तन में भाग लेंगे, भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे तो बहुत लाभ हमको हो सकता है। श्रीमद् भागवत ये कलयुग के लिए धर्म का ग्रंथ है। इसमें लोगों को बताया जाता है कि कलयुग में धर्म कैसे किया जाए। पुराण आर्को अधुनो उदितः, ये पुराण जो है ये सूर्य के समान है, अधुना उदितः, अभी इसका उदय हुआ है कलयुग में, और इसलिए कलयुग के अंधे लोगों के लिए ये मार्गदर्शिका है। और इस श्रीमद् भागवत का आखिरी श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, जिनके नाम का संकीर्तन करने से सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और दुखों का शमन हो जाता है, ऐसे श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन के कार्यक्रम में अवश्य भाग लेना चाहिए। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो कार्य हैं, ये जीव के लिए प्राणी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। साथ साथ अगले नियम में रूप गोस्वामी बताते हैं कि हमें जप भी करना चाहिए। ये है 34वां नियम। भगवान का नाम दो प्रकार से लिए जाते हैं, एक है जब हम भक्तों के संग में आकर संगीतमय ढंग से वाद्यों के साथ हम गीत गाते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो उसको संकीर्तन कहते हैं, सम्यक कीर्तन। कीर्तन मतलब जो जोर से किया जाता है, सब लोग साथ में करते हैं, और सम्यक मतलब परिपूर्ण। सम्यक कीर्तन मतलब संकीर्तन। ये कलयुग का युग धर्म है। लेकिन भगवान का नाम हम अपने आप जप करके भी माला के ऊपर भी कर सकते हैं और करना चाहिए, तो ये भी भक्ति का महत्वपूर्ण नियम है। तो आप में से कई भक्त रोज 16 माला जाप करते हैं। आप में से यहां मंदिर में कितने भक्त रोज 16 माला जाप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का? हाथ ऊपर कीजिएगा। कितने भक्त रोज 16 माला जाप करते हैं? कम है। आप में से कितने भक्त 10 माला या अधिक जाप करते हैं रोज, लेकिन 16 से नीचे? और आप में से कितने भक्त हैं तो 10 से कम करते हैं, लेकिन कुछ तो करते हैं, कम से कम एक माला, दो माला, चार माला करते हैं? बहुत अच्छा। तो हम में से जो 16 माला रोज जाप करते हैं हरे कृष्ण मंत्र का, यहां पर है देखिए, हमें 16 माला कम से कम ये नियम बनाए रखना चाहिए, और कभी कभी ज्यादा भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर हमें समय मिले, मौका मिले, तो ज्यादा भी करना चाहिए, और खास करके एकादशी जैसे दिन पर हमें ज्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। आप में से जो 16 माला नहीं कर रहे हैं, 10, 12, 8 ऐसे कर रहे हैं, तो आप 16 की ओर आगे बढ़िए और 16 तक जल्दी से पहुंच जाइए और पहुंच कर स्थिर रहिए। और आप में से जो केवल 1-2 कर रहे हैं, आप भी आगे बढ़िए, अभी 6 माला कीजिए, 8 माला कीजिए रोज माला के ऊपर। और आप में से जो जाप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप आज से शुरू कीजिए। आज शुभ दिवस है। क्यों शुभ दिवस है आज? क्योंकि आप भगवान के सामने बैठे हैं, भगवान के मंदिर में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, तो यह शुभ दिवस है। क्या शुभ है और अशुभ है, हमें पंचांग देखने के लिए जरूरत नहीं है। आप कृष्ण के लिए कर रहे हैं, मंदिर में आके कर रहे हैं, तो यही शुभ है। भक्ति ही शुभदा, भक्ति का एक लक्षण है, वो शुभ, सबको शुभ बना देती है। इसलिए भगवान कृष्ण के नाम के उच्चारण के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। आज से ही आप शुरू कर दीजिए, कम से कम 2-4 माला रोज कीजिए हरे कृष्ण मंत्र का, और इस तरह से अपने जीवन को आप सफल बनाइए। तो इस तरह से हम 34 नियमों को खत्म कर चुके हैं। और भी नियम हैं, परंतु आज समय नहीं है, तो इनके लिए हम किसी दूसरे रविवार को चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।
ग्रंथ, ज्यादा ग्रंथों का पठन नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ा विश्लेषण दीजिए।
ज्यादा ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए, इसका क्या मतलब है? पिछली बार हम ये चर्चा कर रहे थे कि हमारे भक्तों के लिए यह समस्या नहीं है, समस्या उल्टी है कि भक्त लोग पढ़ाई नहीं करते शास्त्रों का, यह समस्या है। परंतु इस नियम का मतलब यह है कि केवल विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए हमें ज्यादा ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए, केवल ताकि हम बड़े विद्वान करके माने जाएं और ऐसे धुआंधार प्रवचन दें जिसमें लोग कहें वाह 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 कितने बड़े विद्वान हैं, कितने अच्छा प्रवचन देते हैं। ऐसे कारणों के लिए हमें किताबों को पढ़ना नहीं चाहिए। और अगर कोई किताब पढ़ें, चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, तो हमें अच्छी तरह से उसको पढ़ना चाहिए। केवल ऊपर ऊपर से देख लिया फिर उसको रख दिया और ऐसे बात किए जैसे हम इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि मैंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो काफी हैं हमारे सारे जीवन के लिए, तो हमें अच्छी तरह से श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, विशेष करके भगवद गीता जैसे यथारूप, श्रीमद भागवतम, चैतन्य चरितामृत और ये भक्ति रसामृत सिंधु, इनको पढ़ना हमारे लिए काफी है। और अगर अन्य गोस्वामियों के ग्रंथ भी हम पढ़ें, अगर हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं, प्रचार हेतु कर रहे हैं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसमें भी कोई दोष नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण बोलिए।
हरे कृष्ण, आपने बताया कि कम से कम मंदिर को दो बार जाना चाहिए, तो घर के आसपास अगर मंदिर नहीं हो और घर में भी अल्टर नहीं हो तो क्या करना चाहिए उसको?
तो घर में अल्टर बनाना चाहिए और जल्दी से जल्दी भक्ति का इतना प्रचार करना चाहिए कि भक्तों का संग बढ़ जाए और वहां मंदिर बन जाए, है ना? अगर हमारे घर के पास या कहीं भी कोई मंदिर ही नहीं है, घर में तो बना सकते हैं मंदिर और हर रोज घर में ही भगवान का दर्शन कर सकते हैं। कि इसका मतलब है आप सब यहां मंदिर में दिन में एक बार आएंगे, कोशिश करेंगे। और बेलगाम इतना बड़ा शहर नहीं है और वैसे किसी के पास गाड़ी नहीं हो, मोटरसाइकिल नहीं हो, स्कूटर नहीं हो, साइकिल भी नहीं हो, पैदल आ सकते हैं, है ना? और अगर बहुत ज्यादा दूर है, बहुत कठिनाई है, तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये पैदल आने के लिए ज्यादा इतनी कठिनाई नहीं है, 15-20 मिनट आधे घंटे का रास्ता है, तो आने में कोई